हमारा जो अगला सेशन है ये है वैल्यूज एथिक्स एंड पब्लिक ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये समझ सकते हैं बहुत समय से, हम कल से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर सुनते आ रहे हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम सुनते आ रहे हैं, पर हमको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जैसे पानी बिना पेड़, ऐसे ही वैल्यूज बिना एडमिनिस्ट्रेशन। यदि एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से हम वैल्यूज और एथिक्स को निकाल दें तो पूरा सिस्टम ही बिखर सकता है। तो आज का ये जो सेशन है ये विशेष एक पैनल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें मैं हमारे पैनलिस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम हमारे पैनल के जो चेयरपर्सन है, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया वो मंच पर आकर अपना स्थान लें। आप छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं? हाँ जी, ताली बजाकर हम दीदी का स्वागत करेंगे। आप छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं और पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से आप समर्पित रूप से जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करके ब्रह्मा कुमारी इसके साथ सेवाएं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन विंग के आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ में जो सोशल सर्विस विंग है उसमें भी आप नोडल कोऑर्डिनेटर हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसके समय प्रति समय जो कैंपेन्स होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपका विशेष योगदान रहता है। आपको कई उसके लिए सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। तो आज हमारे बीच में आदरणीय दीदी इस पैनल के चेयरपर्सन के रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय भ्राता सीताराम मीना जी को। आप मोदी नगर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। आप रिटायर्ड आईएएस हैं। आपने एमए इकोनॉमिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के रूप से, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज में भी कार्य अपना किया और 1985 आईएएस बैच में आपने फिर सिविल सर्विसेज में अपनी सेवाएं दी। 6 डिस्ट्रिक्ट्स के आप डीएम रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं, साथ में मुरादाबाद, मिर्जापुर, आगरा जैसे जिलों के आप डिविजनल कमिश्नर रहे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में भी आपने यूपी गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दी और इस प्रकार यूपी गवर्नमेंट में आपने कई कार्यभार संभाले। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप पिछले 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हैं। हम ताली बजाकर भाई सबका स्वागत करेंगे। और एडमिन विंग के आप लाइफ मेंबर हैं, स्पार्क विंग जो है ब्रह्मा कुमारी का उसके भी आप लाइफ मेंबर हैं और समय प्रति समय कई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स आदि में, कैंपेन्स में आप अपना योगदान देते रहते हैं। भाई साहब आपका भी आज के इस पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सीमा चौधरी जी को, जो गुड़गांव दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात इंटरनेशनल यूथ सेंटर चाणक्यपुरी दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दी एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर और वर्तमान समय आप बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम के प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ उनको पालने में आपका विशेष योगदान है, तो सीमा जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ में भरत त्रिवेदी जी जो हमारे बीच में है वलसाड गुजरात से, आपको भी हम स्टेज पर आमंत्रित करेंगे हमारे पैनलिस्ट के रूप में। आप आईआईटी बॉम्बे के केमिकल इंजीनियर हैं, आपने बीटेक की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात अपने 42 वर्षों के कार्ययोगी जीवन में वर्तमान समय आप अतुल इन्फोटेक के डायरेक्टर हैं, अतुल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग प्रोफेसर अपनी सेवाएं देते हैं। 30 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हैं और ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं का लाभ अपने जीवन में भी लेते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी उन शिक्षाओं का लाभ अपने जीवन से प्रस्तुत करते हैं। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिंदु दीदी जी को, जो सिरसा हरियाणा से हमारे बीच में पहुंचे हैं। दीदी आपसे अनुरोध है, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। ब्रह्मा कुमारीज आनंद सरोवर सर्कल सिरसा स्थित जो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है और साथ में जो संबंधित सेवा केंद्र हैं, उनके आप प्रभारी हैं। पिछले 45 वर्षों से समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 14 वर्षों तक आपने बैंकिंग फील्ड में भी अपनी लौकिक सेवाएं दी, उसका भी अनुभव प्राप्त किया और फिर ईश्वरीय प्रेरणा से अपना जीवन इस कार्य में समर्पित किया जन कल्याण के लिए। आपको गवर्नर ऑफ ओडिशा द्वारा सिरसा गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और आप अपने जीवन से समाज की बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं। तो हमारे पैनलिस्ट हमारे बीच में हैं, एक बार जोरदार ताली से हम सभी पैनलिस्ट का स्वागत करेंगे। एक मिनट उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे जिन्होंने हमारे स्टेज पे जो भी बैठे हैं उनको ऐसा जीवन प्रदान किया। एक मिनट परमात्मा की याद से इस सेशन को आरंभ करेंगे।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे, इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।
अब हम हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करेंगे कि बुके और बैचेस द्वारा, हमारे तिलक द्वारा, हमारे पैनलिस्ट का, हमारे मंचासीन विभूतियों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और साथ में हमारे बीच में कुमारी प्रियांशी भी मौजूद है जयपुर से, तो इस सम्मान के बाद बहुत सुंदर नृत्य के साथ भी ये सम्मान होगा, तो आप सभी तालियां बजा सकते हैं। ये फूलों का गुलदस्ता वास्तव में सच्चे फूलों का गुलदस्ता है। आप सबके चेहरों की मुस्कान जो हम स्टेज पर बैठे अपने डिग्निटरीज को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो एक बार सभी जो अच्छे से स्माइल कर सकते हैं ताली बजाकर। अब मैं कुमारी प्रियांशी से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत डांस हम सबके बीच में प्रस्तुत करें।
परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणा
बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्रियांशी का, जो इतना सुंदर नृत्य, किस किस का मन भी नाच रहा था कुमारी प्रियांशी के साथ वो हाथ खड़ा करे। बहुत ही सुंदर नृत्य हम सबके बीच में प्रस्तुत किया और वास्तव में देख रहे होंगे नृत्य में देवी की महिमा की जा रही थी। ऐसा क्या है जो एक देवी को इतना पूजा जाता है? है तो वो भी हमारी तरह मनुष्य स्वरूप, लेकिन उनकी पूजा होती है किस कारण? क्योंकि उनके जीवन में वो दिव्य गुण हैं, वो वैल्यूज हैं, जो आज हमारे अंदर कहीं ना कहीं इनका अभाव आता जा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का भी यही लक्ष्य है। हमको पहले दिन से ही बताया जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है नर ऐसी करनी करे जो नारायण समान बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी समान बने। तो वो दिव्य गुण आखिर हमारे जीवन में कैसे आ सकते हैं और विशेष उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हम लाभ ले सकते हैं, आज का विषय इसी पर है। तो सर्वप्रथम हम हमारी जो आदरणीय चेयरपर्सन है शैलजा दीदी जी, उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस विषय पर, वैल्यूज एथिक्स एंड पब्लिक ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपने विशिष्ट विचार हम सबके बीच में प्रस्तुत करें और इस पैनल को एक दिशा निर्देश प्रदान करें। आदरणीय शैलजा दीदी जी।
ओम शांति। सम्माननीय मंच और सभा में बैठे हुए सभी स्नेही भाइयों और बहनों, आज का ये विषय बहुत ही व्यवहारिक है। हम सभी जानते हैं कि प्रशासन या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी का, ब्रिज का काम करते हैं। सरकारी योजनाओं को, संसाधनों को जनता के आखिरी व्यक्ति तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेवारी होती है। और इस कर्तव्य को निभाने में एक होती है प्रोफेशनल लाइफ, एक है हमारे अपने मूल्य, हमारे अंदर की मानवीय संवेदना, हमारे अंदर का स्नेह भाव, करुणा भाव, हमारे अंदर की निष्पक्षता, हमारे अंदर अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी। ये जो भी मूल्य है, ये मूल्य हमें अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूरा करने में न केवल सहायक होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, दुविधा या असमंजस की स्थिति होती है, उस समय पर ये हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो जीवन के अंदर जो मूल्य है, वैल्यूज है, एथिक्स है, ये हमारा हमारी अपनी इनेट वैल्यूज है। आपने कल आत्मा का लेसन पढ़ा होगा सुबह के सेशन में, शिविर में, उसमें आत्मा के सात गुणों का वर्णन किया है। माना आत्मा के ये ओरिजिनल गुण है, आत्मा के का ये ओरिजिनल स्वभाव है, उसकी अपनी ये वैल्यूज है। और जितना ही मन और बुद्धि एकाग्र होकर के, आत्मस्थित होकर के कार्य करती है, तो निश्चित ही हमारे लिए क्या नैतिक सिद्धांत है, हमें करना क्या है, ये हमें बहुत सहज स्पष्ट होता जाता है। आध्यात्मिकता प्रशासन के अंदर इन मूल्यों को लाने में अपना पूर्ण योगदान देती है। तो इन नैतिक मूल्यों को हम अपने व्यवहार में लेकर आए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उससे पहले ये एक अपना बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार भी है। कल आदरणीय आशा दीदी जी से हमने संस्था के संस्थापक आदरणीय पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन परिचय में सुना कि उनके अंदर कितनी मानवीय संवेदना थी, करुणा की भावना थी, और एक छोटे से परिवार से उठ करके संपूर्ण विश्व को उन्होंने अपना परिवार बना लिया। संपूर्ण विश्व की आत्माओं को अपने परिवार का सदस्य, अपने बच्चे के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसी क्या विशेषता थी ब्रह्मा बाबा के जीवन में? ये मूल्य ही तो थे, ये प्रेम की भावना थी, ये अपनत्व की भावना थी, करुणा थी, जिसने हम सभी को इस संस्था में संपूर्ण समर्पित जीवन के लिए प्रेरित किया। हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, जो पूर्व प्रशासिका संस्था की रही हैं, उनके जीवन को हमने देखा कि एक बार वो सफर कर रहे थे और उनके पास एक ही बर्थ थी और उनके साथ एक छोटी बहन, वो होगी 15-16 वर्ष की, वो साथ में चल रही थी। तो दादी जी ने पहले उसे सोने के लिए दिया। सामने वालों ने कहा, दादी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको रेस्ट की आवश्यकता है, कल सुबह आपका प्रोग्राम है। दादी ने कहा, ये बच्ची है, इसको अभ्यास नहीं है रात्रि जागरण का, इसकी नींद पूरी हो जाएगी फिर मैं रेस्ट कर लूंगी। तो ये जो भावना है ये परिवार के अंदर ही हो सकती है। और यही भावना जब उस बच्ची ने महसूस किया सुबह जागने के बाद कि दादी जी सारी रात बैठे रहे हैं, उसका हृदय कैसा हुआ? उसको आया, ये तो मेरी अपनी दादी है, अपनी माँ के समान है, इन्होंने मेरी इतनी केयर की, मैं सारा जीवन इनके मार्गदर्शन में सहज चल सकती हूँ। तो ये जो मानवीय मूल्य है, जैसे अभी हम सुन रहे थे आउट ऑफ वे, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारे नियमों में नहीं आती हैं, लेकिन एक मानवीय पक्ष जो हमारा है वो हमारे इस प्रशासन को बहुत मजबूत करता है। हमारे माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है। एक बार उनसे किसी ने पूछा था, आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का क्षण कौन सा था? तो उन्होंने कहा, बहुत सारे ऑप्शन उनको दिए गए, जब आपने ये सैटेलाइट को छोड़ा था, जब आप इसके अध्यक्ष बने थे डीआरडीओ के, या जब आपको मिसाइल मैन का टाइटल, या जब आप राष्ट्रपति के लिए चुने गए। उन्होंने कहा, याद करके, मेरे जीवन का सबसे ज्यादा खुशी का क्षण था जब हमारी डीआरडीओ की टीम ने, जो कार्बन फाइबर्स होते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, उनसे पोलियो ग्रस्त बच्चों के लिए कैलिपर्स बना करके दिए। वो 300 ग्राम वजन के थे, बहुत लाइट वेट वाले थे, बच्चों ने आसानी से उनको वेयर किया और जब उन्होंने उनको पहना और उन्होंने चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो खुशी में नाच रहे थे, उनकी खुशी को देख करके जो मेरे मन में खुशी आई, वो मेरे जीवन का सबसे अमूल्य खुशी का क्षण था। तो देखिए, ये भावना जो अंदर में है कि हम किसी के लिए, हम जिन पदों पर हैं, हमारे पास जो अथॉरिटीज है, हम उनके द्वारा मानव मात्र की सहज सेवा कैसे कर सकते हैं, सहज रूप में उनको हम परिवार के रूप में, जैसे अभी कहा कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय एक परिवार पहले है, एक शैक्षणिक संस्थान, आध्यात्मिक संस्थान ये पीछे है, उसी प्रकार से हमारा जो प्रशासनिक परिवार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा समाज जो सरकार को चुन करके देता है और उसकी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आप जो सभी प्रशासनिक अधिकारी निमित्त बनते हैं, तो उनके अंदर जितनी ये वैल्यूज होगी, जितना प्यार होगा, जितना अपनापन होगा, जितना अपने कलीग्स के प्रति, अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति आपके मन के अंदर में भावना होगी अपनेपन की, उतना आप उनके ट्रस्ट को, उनके विश्वास को जीत सकेंगे। प्रशासन में या किसी भी संगठन के अंदर में हम अपने सहकर्मियों के विश्वास को जितना जीत लेते हैं, हम उनको अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति उतना ही समर्पित पाते हैं। ऐसे ही कलाम साहब जब DRDO के चीफ थे, उस समय पर एक दिन उनके पास उनका अधीनस्थ एक आए और उन्होंने कहा, सर आज मैं टाइम पर घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि रोज ही 7-7:30 बज जाता है, मैं टाइम पर घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों से वायदा किया है आज उन्हें सर्कस घुमाने लेकर जाऊंगा। सर ने कहा ठीक है, लेकिन वो कार्य इतना था उनके सामने कि वो व्यक्ति खुद ही भूल गया, फाइलों में डूबा रहा, टाइम ओवर हो गया। कलाम साहब ने देखा कि इसने तो वायदा किया था, लेकिन इसके पास तो ये फाइलें सब पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा और कुछ करने के लिए निकल गए। रात्रि को जब वो व्यक्ति फ्री हुआ और अपने घर जाने के लिए, तो उसको बड़ा अंदर में गिल्टी फील हो रही थी, आज भी बच्चे नाराज होंगे, आज मैं इतना पक्का वायदा करके आया था, आज भी उनको उन्होंने मिस किया, वो सर्कस देखने नहीं जा पाए। वो बहुत उसी वाहपोह में घर पहुंचा, घर में देखा तो बच्चे बहुत खुश, बहुत कुछ खिलौने, बहुत कुछ है ना, बैलून्स वगैरह उनके पास। उन्होंने कहा क्या बात है आज? बोले पापा, आपने जिन अंकल को भेजा था ना, उन्होंने बहुत प्यार से सर्कस घुमाई, ये झूला वो झूला ये सब हमको घुमाया और साथ में हमको इतने खिलौने वगैरह भी दिलाए। तो वो सोच में पड़ गए, मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा। पूछा कौन से अंकल थे? कहा नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने उनका हुलिया बताया तो वो समझ गए। अब आप बताइए कि वो जो कर्मचारी थे, उसके मन में अपने उस अधिकारी के प्रति कितनी श्रद्धा भाव आ गया होगा और कितने समर्पण भाव से वो सारा जीवन उसके लिए, उनके कार्य के लिए, उस ऑफिस के लिए वो समर्पित होकर के कार्य करता रहा होगा। तो ये जो वैल्यूज है, ये व्यक्ति को व्यक्ति के नजदीक लेकर के आती हैं। ये जो मूल्य है, हमें दुविधा और असमंजस की स्थिति से बाहर निकालते हैं। ये जो मूल्य है, ये हमें विपरीत परिस्थिति में भी हम स्टेबल कैसे रह सके, ये हमें प्रैक्टिकली सिखाते हैं। हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय जब मदन मोहन मालवीय जी, बाद में स्वतंत्रता संग्राम के बाद में जब वो मालवीय जी के मन में विचार आया कि हमारे देश में एक हिंदू यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वो लोगों से फंड इकट्ठा करने के लिए निकले, उनके अंदर ये विशेष कला थी कि लोगों को कन्विंस कर लेते थे, तो उन्हीं को निमित्त बनाया गया। वो कई जगह से मदद लेकर आए। लास्ट में जब वो हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे और उनसे भी पूरी भूमिका बनाकर बताया, तो उन्होंने कहा मैं आपको बहुत बड़ी राशि दे सकता हूं, बशर्ते कि आप उस यूनिवर्सिटी को हमारे नाम पर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अनाउंस हो चुका है हम एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं। कहा फिर तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, और उनको जाने के लिए रास्ता दिखा दिया। जब वो जाने लगे उठ करके, तो अपना एक जूता उन्होंने ऐसे फेंक कर दिया, चाहो तो इसको लेकर जा सकते हो। एक बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन मालवीय जी ने अपने मन को, भावों को संतुलित रखते हुए बड़े प्यार से उसको स्वीकार किया। मार्केट में गए और उसकी नीलामी शुरू कर दी। अब निजाम साहब का जूता है, बोली लगने लगी, बढ़ चढ़ करके लोग बोली लगाने लगे। बाद में उनके वजीर को पता चला, वो आया, बोले निजाम साहब से कहा वो तो ऐसे कर रहे हैं, बोले तुम चाहे जितनी ऊंची बोली लगाकर वो मेरा जूता वापस ले आओ, इज्जत का सवाल है। और बहुत बड़ी बोली लगाकर वो उन्होंने उसके जूते को वापस किया। तो उन्होंने अपने मन को असंतुलित नहीं होने दिया, परिस्थिति ऐसी थी, अपमानित होकर के निकलना और एक प्रकार से अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा डाउटफुल हो जाना, लेकिन उनकी मन की जो स्थिरता थी, उस स्थिरता ने कलेक्शन भी किया और अपने सम्मान को भी बचाया। तो हमारे सामने भी ऐसी बहुत बार परिस्थितियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों को जब हमारे अंदर अंदर की पावर होती है, स्टेबल माइंड होता है, तो हम किसी भी प्रकार के प्रेशर में हो या कहीं हमें सामने अपना व्यक्तिगत लाभ भी दिख रहा हो, तब भी हम अपने एथिक्स को, अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे रामायण के अंदर एक उदाहरण आता है अंगद का, कि अंगद जब रावण की सभा में गया तो उसको पहले बहुत लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, उसको पहले हवाला दिया गया, तुम्हारे पिता तो मेरे मित्र थे, तुम्हारे पिता का तो ये राम ने हत्या कर दी है, तुम उनका साथ दे रहे हो, पहले दूसरे ढंग से बोला, फिर लालच दिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, सुग्रीव को फिर से बेदखल कर देंगे, सब प्रकार से प्रेशर दिया, लालच भी दिया, लेकिन अंगद जरा भी अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से तस्मस नहीं हुए। तो ये आंतरिक शक्ति का ही प्रमाण है कि चाहे हमारे ऊपर कैसा भी प्रेशर आए, चाहे हमें अपना कितना भी बड़ा व्यक्तिगत लाभ नजर आ रहा हो, तब भी हम अपने जीवन मूल्यों को, अपने नैतिक सिद्धांतों को ना छोड़े, तभी हम पब्लिक का ट्रस्ट जीत सकते हैं, अपने प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, और जो भी हमारी योजनाएं जिनके लिए हमें निमित्त बनाया गया है, निमित्त मात्र हैं, उनको हम सहज रूप से पूर्ण कर सकेंगे। तो पब्लिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ये तीनों वैल्यूज का होना, वैल्यूज, एथिक्स और पब्लिक ट्रस्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, जो आपने इतने सारे जीवंत उदाहरणों द्वारा हमें ये बताया कि कैसे यदि हमें दूसरे के जीवन में वैल्यूज भरनी है, वास्तव में हमारे जीवन की वैल्यूज वैल्यूएबल तभी हैं जब उससे दूसरे के जीवन में कुछ वैल्यूज आ सके, दूसरे के जीवन में थोड़ी सी खुशी भर सके, तभी हमारे जीवन की वैल्यूज का महत्व है। तो हम हमारे अभी आज के पैनलिस्ट सीताराम मीना जी से पूछना चाहेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के इतने सारे पदों पर रहे, आपके अनुसार वैल्यूज, एथिक्स और पब्लिक ट्रस्ट का क्या अर्थ है, इस विषय पर एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप से आप प्रकाश डालें और वैल्यूज का एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या महत्व है उसको स्पष्ट करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद आप सभी का आज के इस पैनल डिस्कशन के सत्र में हमारे बीच उपस्थित परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी, जो कि आज के इस सेशन की अध्यक्षता भी कर रही हैं, साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बिंदु दीदी जी, जो सिरसा हरियाणा से पधारी हैं, परमादरणीय डॉक्टर सीमा चौधरी जी, और हमारे बीच ही पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित आदरणीय भ्राता भरत त्रिवेदी जी। इस सेशन का कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वर्णिका दीदी जी, और सबसे इम्पोर्टेंट तो भारत के सभी क्षेत्रों से, विभिन्न जगहों से, विभिन्न प्रांतों से आए हुए और आज यहाँ पर उपस्थित, कुछ हो सकता है यहाँ पर उपस्थित भी नहीं है लेकिन यहाँ पर पधारे हैं, उन सबका स्वागत, अभिनंदन और आभार। खासतौर से आप सभी जो पहले ब्रह्मा कुमारी से बहुत गहराई से, निकटता से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको विशेष रूप से मैं परम भाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि आप लोग एक ऐसे जगह पर आए हैं जो हमारे सबके परमपिता परमात्मा के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया है, और उसके लिए शारीरिक माध्यम, लौकिक माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा को बनाया गया, और उन्होंने जो स्थापना की और जो शुरुआत की वो हम सभी आत्माओं के लिए किया। हमेशा परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यानी बिना आत्मा के हमारे अंदर जो आत्मा के मूल्य हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो कहीं आ ही नहीं सकते, कहीं से भी नहीं प्राप्त हो सकते। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी ने हमारे बीच में आज के टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो तीनों बिंदु हैं आज के, वैल्यूज, एथिक्स एंड पब्लिक ट्रस्ट, ये तीनों आपस में इतने ज़्यादा इंटरमिक्स्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, यानी आपस में गुदे हुए हैं कि उनको देखा जाए तो बहुत अलग नहीं किया जा सकता, और अलग कर भी देते हैं तो वो उतना काम नहीं कर सकते जितना कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आवश्यकता है। तो पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासकों के लिए ये बहुत जरूरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे मैनेजर्स हैं, चाहे और किसी भी कैपेसिटी में किसी भी पद पर विराजमान हैं, यहाँ तक कि जो सबसे नीचे का लेवल का कर्मचारी है, जिसको हम पियोन या सेवक या और किसी भी नाम से बुलाते हों, उसके अंदर भी आध्यात्मिक और जीवन की वैल्यूज का होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब उम्मीद तो ये करते हैं कि वो भी अच्छा आचरण करे, अच्छा व्यवहार करे, अपनी ड्यूटी पाबंदी के साथ करे, अपनी ड्यूटी प्रेम के साथ करे, डिवोशन के साथ करे। तो आदरणीय दीदी जी ने दो तीन ऐसे अच्छे उदाहरण सुनाए जो देखा जाए तो ये जो बाकी के हमारे कानून, संविधान, नियमों, उपनियमों में, प्रक्रियाओं में, उनमें नहीं है, लेकिन ये हमारे सार्वजनिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। अगर हम इसको मानते हैं तो उसको फिर हमें अपने जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है, क्योंकि तभी जाकर के ये जो दीदी ने उदाहरण दिए पब्लिक ट्रस्ट उसी से आएगा। आज की परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं, स्थितियों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो चाहे भारत हो चाहे भारत से भिन्न कोई और देश हो, भारत के पड़ोसी देश हो, वहां पर शासन और प्रशासन के प्रति जो फेथ, जो ट्रस्ट, जो जुड़ाव महसूस होना चाहिए वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इज्जत धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हम अपने जीवनों से अलग हो गए हैं। जबकि भारत सरकार ने अभी जैसे जो कर्मयोगी एक सिस्टम शुरू किया, उसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि हम अपने जीवन में सिद्धांतों, मूल्यों, कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं को इस तरह से लागू करें कि कर्म के साथ में योग भी हो। लेकिन जहां पर योग को जानते ही ना हो लोग, तो किस तरह से क्या योग होगा कर्म के साथ में। इसलिए बहुत आवश्यक है ये समझना भी कि आखिर में ये जीवन मूल्य, आखिर में ये एथिक्स जो भी हैं और जो ट्रस्ट है वो आता कहाँ से, मिलता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, उसका जरिया क्या है। और वो तो आपने अब दो दिन से, आज तीसरा दिन है, आपने कुछ सुना ही होगा, समझा ही होगा। ये आत्मा पिछले 25 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और हमने यहाँ पर यही अनुभव किया है कि परमपिता परमात्मा, जिनको हम सर्वशक्तिवान कहते हैं, सर्वोच्च कहते हैं, जो कि यहाँ पर ये भी मानना है कि वो सारे संसार के, पूरे सृष्टि के सर्वोच्च प्रशासक भी हैं। तो अगर वो सर्वोच्च प्रशासक हैं तो डेफिनेटली हम भी उनके उत्तराधिकारी ही जैसे हुए सर्वोच्च प्रशासक के। और जब सर्वोच्च प्रशासक के हम उत्तराधिकारी हैं तो कहते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा आटा वैसी रोटी, और जैसा बाप वैसे बच्चा। तो ये सारी चीजें फिर हमारे अंदर भी आनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ बोलने से, सुनने से, समझने से नहीं आ सकती। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और एक बहुत अच्छा कायदा हमने देखा है, वो देखा है कि यहाँ पर दो चीजें साथ साथ चलती हैं राजयोग शिक्षा में। एक तो पहला काम शिक्षा है, दूसरा काम योग है यानी मेडिटेशन है। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। और कमाल की जो बात है वो तो ये है कि जो हम रोजाना सुबह प्रातःकाल मुरली, जिसको नाम दिया गया है ज्ञान मुरली, वो एक अद्भुत चीज है। उसकी एक अद्भुतता, मैं ज्यादा सभी में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अद्भुतता जो हम प्रशासकों, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, वो है कैसे उससे विश्व एकता बनती है। और जो परिचय हमें जो आत्मा का, परमात्मा का दिया है, तो कैसे वर्ल्ड ब्रदरहुड आती है। और जब वर्ल्ड ब्रदरहुड कायम हो जाएगी हमारे मन में, विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में, तो निस्संदेह रूप से हम अपने ड्यूटीज को भी ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि उसकी विशेषता जो मैं कह रहा था कि वर्ल्ड यूनिटी को कैसे एस्टेब्लिश करती है, पूरे संसार में जितनी भी इनकी ब्रांचेस हैं, यानी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर्स कहें, सेवा केंद्र कहें, ब्रांचेस कहें, कुछ भी कहें, आज तारीख है जैसे 6 जून, तो 6 जून की जो ज्ञान मुरली यहाँ पर इस मुख्यालय में पढ़ाई गई है, वही सारे सेवा केंद्रों, सारे ब्रांचेस में पढ़ाई जाती है, चाहे कोई भी देश है, कोई भी हिस्सा है संसार का, हर एक जगह पर वही पढ़ाई जाती है। तो ये बताइए, कोई और यूनिवर्सिटी है संसार में जहाँ पर एक ही पाठ उसके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता हो? और जब वो पाठ पढ़ाया गया तो वो हमारे मनन चिंतन में भी आएगा, व्यवहार में भी आएगा, आचरण में भी आएगा, बोल में भी आएगा, और उससे ऊपर जब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक ही शिक्षक से वो हम पढ़ रहे हैं, या अलग अलग टीचर्स नहीं है, आदरणीय जो दीदियां हैं उनको निमित्त बनाया गया है, लेकिन टीचर हमारे सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा स्वयं खुदा हैं, वो ही पढ़ाते हैं, और वो ही इस तरह का सिस्टम स्थापित कर सकते हैं कि सारे संसार में एक ही जैसी पढ़ाई हो, एक दिन में अलग अलग चीज नहीं हो, और सबको अपने ही परिवार का हिस्सा माने। इस आत्मा को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि पूरे भारत में, लगभग सभी प्रांतों में जाने का अवसर मिला, तो वहां पर जिस भी सेवा केंद्र पर हम गए, वहां पर उतनी ही आत्मीयता से हमें सभी भाई बहन, बाकी आदरणीय दीदियां दादियां वो सब मिली, और उसी तरह से कि हाँ मेरा भाई आ गया है। अरे आप समझिए कि कितने ऊंचे लेवल पर बैठे हुए दादियां दीदियां बड़े भाई कहते हैं कि मेरा भाई आ गया है, मेरी बहन आ गई है। इससे ज्यादा एकता का और क्या पाठ हो सकता है जो प्रैक्टिकल में हो सकता है? और उसी से सारी आत्मीयता आ जाएगी। जहां तक रही हमारे प्रशासनिक कार्यों की बात, उनमें वास्तव में हमें जब तक अपने जीवन मूल्यों का पता नहीं है, और जब तक हमने उनको अपने आचरण और व्यवहार में नहीं लाया है, तब तक हमारी पढ़ाई भी व्यर्थ है, हमारा काम करना भी बेकार का है। हम फिर इधर उधर की बातें कर दें, बातों से किसी को भले ही संतुष्ट कर दें, लेकिन उसके दिल में जगह नहीं बना सकते। दिल में जगह बनाने वाली बातें आदरणीय शैलजा दीदी जी ने हमें पहले ही बता दी हैं। तो मैं तो अपना बात इतने से ही कहना चाहूंगा कि अगर हमें वास्तव में प्रशासन का हिस्सा बनना है, सही तरीके से प्रशासन करना है, तो जो आज का टॉपिक का जो लास्ट वर्ड है पब्लिक ट्रस्ट, उस ट्रस्ट शब्द से ही ट्रस्टीशिप आता है। और देखा जाए तो हम प्रशासन से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक कार्य करने वाला कर्मचारी पदाधिकारी, वो एक ट्रस्टी है ही है, हर मायने में ट्रस्टी है, भले ही हम उसको समझें या ना समझें, क्योंकि वो कार्य किसका दिया हुआ है? हमारा अपना तो नहीं है, सरकार ने भी दिया है, तो सरकार भी पहले ट्रस्टी बनी है, उन्होंने ही ट्रस्ट बनाकर के संविधान, कानून, नियम, प्रक्रियाएं और बाकी के अधिसूचनाएं वो सब जारी किए हैं, उन सब के अधीन ही तो हम, उनके द्वारा ही तो हम सारा कार्य करते हैं। तो हमारा है क्या? क्या जो जिस पद पर हम कभी बैठे, हम जैसे बहन जी ने बताया कि 6 जिलों में हम डीएम और कलेक्टर रहे, तो रहे ना, कितने दिन तक रहे? जितने दिन वहां रहे, एक जिले में हम 7 दिन भी रहे, तो उस कुर्सी को हम अपने आप समझ लें कि मैं ही डीएम हूं और मैं हमेशा डीएम ही रहूंगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। 3 डिविजन्स में डिविजनल कमिश्नर रहे, 6-7 डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, लेकिन क्या वास्तव में वो मेरा ही पद था? वो तो एक निमित्त तौर पर हमें वो काम करने के लिए कार्य दिया गया। तो अगर हम जब तक अपने आप को ट्रस्टी नहीं समझेंगे, तब तक पब्लिक ट्रस्ट भी हम अपने कार्यों से, अपने आचरण से, अपने उदाहरणों से, अपने निर्णयों से, अपने क्रियाकलापों से स्थापित कर नहीं सकते। और इसका जो जरिया है वो मैंने तो और कहीं कोई किसी संस्था में इस तरह से नहीं देखा, वो जरिया यहाँ पर हमें मिलता है इतने कायदे से, सिंपल भाषा में, टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं, घुमाओ फिराओ की कोई बात नहीं, वो सिखाया जाता है कि हम उसे सीख करके अपने जीवन में व्यवहार में ले आए। तो यही हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की, मैनेजर्स की, एग्जीक्यूटिव्स की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम इसको सीख जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो इतने सुंदर शब्दों में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और अपने अनुभवों से बताई, जो जीवन के अनुभव आपके रहे, राजयोग के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के जो अनुभव रहे वो आपने साझा किए। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि परमात्मा कौन है, सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर है। और वहीं देखिए हम परमात्मा की महिमा में गाते हैं कि वो सर्व गुणों का सागर है। आज आपने सुना होगा परमात्मा सर्व गुणों का सागर है और वो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर है। इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि जितने ज्यादा अच्छे से हम अपने गुण धारण करते हैं उतना अच्छा हम एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं। दुनिया का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो रहा है? परमात्मा के अलावा कोई इस दुनिया का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकता है? नहीं कर सकता, इसीलिए उसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। और दूसरी बहुत अच्छी बात आपने पब्लिक ट्रस्ट पर बताई कि जब तक हमारे अंदर ट्रस्टीशिप नहीं है कि मैं निमित्त हूं इस पद पर, जब तक मेरा का भाव है तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। और जिस क्षण हमारे अंदर निमित्त भाव आ जाता है उस समय से हमारा हर कार्य क्या बन जाता है, जन सेवा बन जाती है। पब्लिक ट्रस्ट अपने आप हमें मिलता है। तो बहुत सुंदर अपने जीवन के अनुभवों से भाई साहब आपने हमें बताया। हम अभी हमारे भ्राता भरत त्रिवेदी जी से पूछना चाहेंगे कि आप एक कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, अतुल इन्फोटेक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आज की दुनिया में आप इस कंपनी को ड्राइव करते हैं। आपके सामने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसका आज बहुत नामाचार है। और कहीं ना कहीं अगर हम अपनी यंग जनरेशन को देखें तो हम कहते हैं आजकल की यंग जनरेशन में वैल्यूज और एथिक्स कम होते जा रहे हैं, और उसका कारण, उसका दोष हम किसको देते हैं? टेक्नोलॉजी को देते हैं। तो भाई साहब हम आपके अनुभवों से पूछना चाहेंगे, हम देखिए कहते हैं हमारा ये मानव जीवन है बहुत अमूल्य है, सर्व स्पीशीज में सबसे ऊंची स्पीशीज कौन सी है? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जीवन सबसे ऊंचा है क्योंकि इस जीवन में वैल्यूज हैं। तो भाई साहब आप अपने अनुभव से बताइए कि आज के इस जीवन में जहां हम एक तरफ टेक्नोलॉजी को बढ़ता देख रहे हैं, वैल्यूज और एथिक्स की आखिर क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, वो आप अपने अनुभव से संक्षिप्त में हमें बताएं।
ओम शांति। मंचासीन परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, आमंत्रित मेहमान, जैसे बहन बता रही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कुछ नाता अभी भी रहा है मेरा। हालांकि मेजर काम सोशल सीएसआर का भी करता हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बात जो आज के टॉपिक से संलग्न है वो एक बताना चाहूंगा संक्षिप्त में। सभी ने शायद चैट जीपीटी नाम सुना होगा, यूज भी करते होंगे। तो जितने भी आज तक आविष्कार हुए, नए नए ऐप्स आए, फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, सभी में ये एआई की जो ऐप्स आ रही है, जिसमें पहले आने वाली थी चैट जीपीटी, उसके बाद में बहुत सारी आई, ये बहुत पॉपुलर हो गई। इसके डाउनलोड्स इतने करोड़ों में हुए कि आज सभी लोग उसका यूज करने लगे हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट इसके लिए मेन जिम्मेवार था, जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहा जाता है, जॉफ्री हिंटन, कनाडा में रहते हैं, टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो डेवलपमेंट देख रहे हैं। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी पहले बाहर आया, उसके बाद में बहुत सारी उसके जैसी और प्रोडक्ट्स भी आए, गूगल के भी आए, माइक्रोसॉफ्ट के भी आए। इतना रैपिड डेवलपमेंट होता जा रहा है कि आज इस हफ्ते का जो समाचार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रीच्ड अ लेवल वेयर इट इज वेरी क्लोज टू डूइंग सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब वो अभी मनुष्यों के ऊपर आधार रख के डेवलप होने के बदले खुद अपने आप को डेवलप करने लगेगी, एंड दैट विल मीन के मनुष्यों की इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगी। तो इसके बारे में जॉफ्री हिंटन, जो गॉडफादर कहलाते हैं, उनको सवाल पूछा गया कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उनका जवाब था, आई हैव नो हेजिटेशन इन टेलिंग इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर मैनकाइंड। मानव जात के लिए ये बहुत विनाशकारी हो सकता है। और इसमें दो राय जो प्रचलित है वो वैज्ञानिक उनमें तो डेफिनेटली नहीं है। जो कंपनीज इसको बनाती है वो अभी भी कहती है कि नहीं, हम उसको किसी भी तरह से कंट्रोल करेंगे। जॉफ्री हिंटन का सभी के लिए उत्तर था कि जो बात को आप कमांडर कंट्रोल से अब तक करते आए, ये जब तक एआई मनुष्यों से लेस इंटेलिजेंट थी उसके लिए चलता था, लेकिन जब एआई मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी, इंटेलिजेंट ज्यादा हो जाएगी, उसको आप कमांड कंट्रोल से कंट्रोल नहीं कर सकते, कमांड देके कंट्रोल नहीं कर सकते। तब पत्रकार ने उनसे ये सवाल किया, तो क्या मनुष्य जात के लिए और कोई होप नहीं है? बोले, नहीं ऐसा नहीं है, एक होप अभी भी है। क्या? तो कि उसको कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है। क्या? तो कि आप नेचर में देखो, कहां पे आपको ऐसा दिखने मिलता है कि जहां ज्यादा इंटेलिजेंट जो है वो कम इंटेलिजेंट को केयर करते हैं। बताया कि जैसे मां उसके बच्चे को केयर करती है, तो ये कैसे होता है कि मनुष्यों में जो वैल्यूज और एथिक्स, दीज आर हिज वर्ड्स नॉट माइन, जो वैल्यूज और एथिक्स मनुष्य को मानवता सिखाता है, अगर हम ये बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा पाए तो हमारे लिए आज भी आशा है। तो ये कैसे किया जाए वो मैं नहीं जानता। अब आप समझिए कि जो चीज साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट जो हुए उसमें ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके कि वो मनुष्यों को ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेट करते हैं, मनुष्यों को गलत जवाब जानबूझ के देते हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट हो गई है। अब ये सोचते हैं कि क्या करें कि जैसे इस ऐसा न हो, और उसके लिए ये जब जवाब उनको मिला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रोग्राम को वैल्यूज और एथिक्स सिखाओ तो हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, देन वी कैन ट्रस्ट इट, अदरवाइज वी कैन नॉट ट्रस्ट द आंसर वॉट एवर द एआई गिव्स और द एक्शन दैट द एआई विल टेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया है अब ये सवाल आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उनको ये एक कारण पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपने आप में ये सब कैसे करने लगा। तो रिसर्चर्स को ये बात पता चली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए डेटा कहां से लिया, इंटरनेट से, और इंटरनेट के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा जो है उसमें कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन साथ साथ में बुरी बातें भी हैं हर देश की हर भाषा में। तो ये जो सीखे एआई को ट्रेन किया तो उसको अच्छे के साथ साथ बुरी बातें भी वो ऑटोमेटिकली सीख गया, और इसके लिए अभी ये प्रश्न आया है। अब इसका संबंध हम हमारे दैनिक जीवन से करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन कहो, ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की ऑफिसेस वगैरह में वहीं तो डेफिनेटली होता है, लेकिन उसके अलावा एक ब्रॉड संदर्भ में देखें प्राइवेट कंपनीज में भी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, एडमिन मैनेजर्स भी होते हैं। हमारी माताएं बहनें घर संभालती है, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन कब आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, जब उसमें कुछ कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी हो तब आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। अगर आप भरोसा नहीं कर सकते तो आपको हमेशा ये डाउट रहेगा कि मैंने जो कहा है लेकिन वो काम होगा या नहीं होगा, क्या मुझे सिर्फ मौखिक सांत्वना दी जा रही है कि हाँ आप जाइए आपका काम हो जाएगा, और वास्तव में वो तो होने वाला नहीं है या सचमुच में वो होगा। ये तब आएगा जब उसके ऊपर भरोसा हो, और भरोसा कब आएगा, जब वैल्यूज व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यवहार से डेमोंस्ट्रेट करता है वो, और एथिक्स जो हम दूसरों के साथ व्यवहार में लाते हैं वो, ये दोनों अगर सही मायने में पॉजिटिव है ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आएगा, इट्स अ कंसीक्वेंस। तो मेरा यही अनुभव है और आशा करता हूं कि इससे जो इम्पोर्टेंस है वो हम व्यक्तिगत स्तर पे बहुत सारे अच्छे उदाहरण उनसे तो समझे ही, लेकिन ये एक जो था वैश्विक लेवल पे जो हो रहा है पूरी मानव जात के साथ, उसका भी एक निचोड़ यही आता है वैल्यूज एथिक्स दे आर एट द कोर फाउंडेशन, अगर वो नहीं है तो भरोसा आ नहीं सकता। थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई जी का, जो उन्होंने हमारे सामने इस गंभीर समस्या को, इस गंभीर बात को रखा है। हम सोच सकते हैं कि यदि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई चीज सुपीरियर बनाती है तो वो हमारी वैल्यूज और एथिक्स है, यदि उसको ही हमने छोड़ दिया तो हमारे हाथ से ये जीवन का कंट्रोल भी धीरे धीरे चला जाएगा, फिर हम टेक्नोलॉजी को क्या कंट्रोल करेंगे। तो यदि हमने हमारे जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको विशेष बनाती है हमारी वैल्यूज और एथिक्स, उसको हम दांव पर नहीं लगा सकते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, जब टेक्नोलॉजी की बात आई, आगे आने वाले फ्यूचर की बात आई कि फ्यूचर अब ऐसा आने वाला है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रांग बन रही है, तो फिर प्रश्न आता है यंगर जनरेशन पर, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। हम सब जो यहां बैठे हैं, हम सब घर गृहस्थ से आए हैं, हम सब के घरों में यंगर जनरेशन बैठी है और हम सब उसको साक्षी होकर सामने देख रहे हैं कि उनका, हाँ मैं समझती हूँ आप सबको अगर प्रश्न पूछने को दिया जाए यंगर जनरेशन से तो ना जाने कितने प्रश्न आ जाएंगे कि उनको हम कैसे एक दिशा आज दें। सबके चेहरों पर मुस्कान भी आ रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि सब इसके अनुभवी यहां पर बैठे हैं, और सबके मन में यह प्रश्न आता है हम ऐसा क्या करें जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन उन वैल्यूज और एथिक्स को लेकर के आगे चले, कम से कम जिनमें हम पले बड़े थे। हम हमेशा उनको किससे कंपेयर करते हैं, अपने बचपन से कंपेयर करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वैल्यूज और एथिक्स अगर सिखानी है तो ये शिक्षाओं में, कहा जाता है अंग्रेजी में कहा जाता है वैल्यूज आर नॉट टॉट दे आर कॉट। बच्चे कैच करते हैं, यंगर जनरेशन वैल्यूज कैच करती है, जो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो सीखते हैं, जो हम बोलते हैं वो नहीं सीखते। तो बोल बोल कर उन्हें नहीं सिखाया जा सकता, उनको प्रैक्टिकली करके सिखाया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं हमारी आज के जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सीमा चौधरी जी से पूछना चाहूंगी कि आप एक बहुत जिम्मेवार पद पर हैं, प्रिंसिपल के रूप से कार्यरत हैं, और आप आज के यंगर जनरेशन के बीच में हैं, उनको जो पालन पोषण करने का कार्य है वो आपके हाथों में है। तो कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको लगता है कि जीवन में बहुत उपयोगी हैं, चाहे वो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, चाहे वो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, एक कुशल प्रशासक हम बच्चों को बना सकें, उसके लिए कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं जो आपको लगता है जीवन में प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारे बीच में रखेंगे?
थैंक यू सो मच वर्णिका दीदी, और सबसे पहले मैं बाबा को धन्यवाद करूंगी कि मुझे इस पैनल का हिस्सा बनाया। हालांकि मैंने 3 मिनट कल मांगी थी, लेकिन मैंने मांगा क्या और उन्होंने दिया क्या। और मेरे जीवन में ये एक चमत्कार है। मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं मांगती बहुत थोड़ा हूँ और वो देते बहुत ज्यादा हैं। बीइंग अ पीएचडी स्कॉलर, आई नेवर वॉन्टेड टू वर्क इन अ कॉलेज, बिकॉज मुझे लगता था छोटे बच्चों में चेंज लाना बहुत आसान है, इसलिए मैंने हमेशा स्कूल चुना। पहले रिसर्च ऑफिसर थी, दीदी ने आपको बताया, उसके बाद मैंने स्कूल्स ज्वाइन किए। व्हेन आई कंसीव्ड माय चाइल्ड, मुझे लगा कि बाबा ने ये बच्चा मुझे दिया है, और मुझे फुल बेड रेस्ट के लिए दिया गया। मैंने कंप्लीट 9 मंथ्स के बाद आई डिलीवर्ड माय चाइल्ड, और उसके बाद अपनी इच्छा से मैंने 2.5 साल तक कोई नौकरी ज्वाइन नहीं करी। मुझे लगा, मैं जब भी सोचती थी कि मैं बाहर जाऊं, तो मुझे लगता था कि बाबा ने ये बच्चा मुझे दिया है, इसे मेरी जरूरत है। उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू भी किया, तो मैंने सिर्फ उतना किया जिससे उसको इफेक्ट नहीं आया। बट आज जब उस बच्चे को बीटेक के लिए वो बाहर चला गया, उसके बाद मैंने फुल फ्लेज, जब बाबा ने मुझे एक प्रिंसिपल बनाया, ही मेड दिस प्रोजेक्ट फॉर मी एज इफ ही वॉज वेटिंग कि तुम, जब भी मैं सोचती थी जाने की, वो मुझे कहते थे हु विल लुक आफ्टर हिम, उसका कौन ध्यान रखेगा। और मुझे लगता है एक माँ से अच्छा ध्यान कोई अपने बच्चे का नहीं रख सकता है, उसे आपकी जरूरत हर समय होती है। यहाँ बहुत सारी माएं बैठी हैं और पिता भी बैठे हैं, और इनके घर में, कुछ के घर में छोटे बच्चे भी होंगे। हम 2 दिन से बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। आज एक स्पीकर थे चड्ढा जी, उन्होंने कहा कि, कहा जाता है आजकल कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड गिर गया है। स्टैंडर्ड क्यों गिर गया? क्योंकि स्कूल में एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिर गया है। स्टैंडर्ड एजुकेशन से पहले वैल्यूज का गिर गया है। वैल्यूज का कहां गिर गया? बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। हमारे समय में माँ होती थी घर में, हम दौड़ के स्कूल से जाते थे, माँ मिलती थी, खाना खिलाती थी, सुलाती थी, द सिस्टम वॉज देयर। अभी जब बच्चा घर जाता है, वी डोंट इवन बिलीव इन लिविंग ज्वाइंट फैमिली, हमें न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, क्योंकि हमें आजादी चाहिए। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हमारे बच्चे। मैं जब स्कूल में बच्चों को देखती हूँ, वो हारे हुए अर्जुन लगते हैं। अर्जुन युद्ध में जाके हारे थे। जब वो खड़े हुए और उन्होंने अपने चारों तरफ लोगों को देखा, तो बैठ गए और कृष्ण से कहा कि मैं हार गया हूं। जिसके गुरु, जिसके सखा कृष्ण थे, वो हार गए। जिन बच्चों के पास माँ भी नहीं है वैल्यूज देने के लिए, सही गलत बताने के लिए, वो अर्जुन क्या करेंगे? स्कूल के टीचर उन्हें नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि जो माएं वहां आ रही हैं वो भी थकी हुई हैं। तो मेरा यही कहना है, व्हेन यू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड, फर्स्ट डिसाइड इट, चाहिए कि नहीं चाहिए। भीड़ नहीं भरनी है, क्योंकि आपको संस्कार देने होंगे, और जब आप उनको संस्कार देंगे, आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत फूल आपके सामने खड़ा है। यू विल फील सेटिस्फाइड हियर। नौकरी करने से आप पैसा कमा लेंगे, यू विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू योर चाइल्ड, बट नॉट दैट वैल्यूज विच शुड बी देयर। द चाइल्ड इन द क्लास इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन। मैं देखती हूँ कि वो एक दूसरे की मदद भी करने के लिए तैयार नहीं, उन्हें पता ही नहीं है मदद होती क्या है, बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप बाई हेल्पर्स। अब एक हेल्पर आपने घर में रख दिया, एक पैसे तय करके रख दिया, जिसे आपने ज्यादा पैसे दिए वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेगा, जिसे कम बार्गेन करके रखे वो कम ध्यान रखेगा, वो आपके बच्चे का ध्यान आपके जैसे कैसे रख सकता है? एंड वेन एट द एंड यू कम बैक फ्रॉम द ऑफिस, यू आर टायर्ड। सो वेन द चाइल्ड लुक्स एट यू, ही कॉल्स यू मा, दो मिनट मैं बहुत थकी हूं, व्हेन द फादर सेंटर वो भी थके हुए। जब आप थके हुए ड्रेन्ड घर वापस आते हैं, आप क्या देंगे उस बच्चे को? एंड आई टेल यू, सीइंग ऑल दिस सिचुएशंस, माय चाइल्ड ही इज 25 इयर्स ओल्ड नाउ, तो आई थिंक दैट इन फ्यूचर ही इज गोइंग टू गेट मैरिड। तो ही सेज, अम्मा हाउ कैन समबडी गिव 20 इयर्स टू दिस प्रोजेक्ट? ही कॉल्स इट अ प्रोजेक्ट एंड ही टेल्स मी, बीइंग अ पीएचडी फ्रॉम जेएनयू, हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट कि आपने मेरे ऊपर अपने 20 साल लगा दिए? तो क्या आप तैयार हैं उन 20 साल को लगाने के लिए? क्योंकि घास उगती है, बगीचा खिलाते हैं, मैंने कल से सुना। तो घर की जो व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है, अवस्था बिगड़ी हुई है तो व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हम सब यही सोच रहे हैं। मेरे पिताजी सिखाते थे कि एक स्त्री का पढ़ने से उसके दो परिवार पढ़ते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं कि वो कमाए। उसकी कमाई क्या होती है? जब उसका घर कोई आके देखे, उसके घर में वैल्यूज, उसके बच्चे संस्कार वाले, और कोई आके कहे कि वाह क्या परिवार है, तो वही एक स्त्री की कमाई होती है। मैं अगेन यहां नहीं कहूंगी बात, यंग गर्ल्स बैठी हुई हैं, दे विल से बीइंग अ प्रिंसिपल शी इज टॉकिंग लाइक दिस, बट आई टेल यू, इफ यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, इट इज मदर्स ड्यूटी टू गिव दैट कंपैशन टू द चाइल्ड। वो प्यार, वो वैल्यूज, वो सिर्फ एक माँ दे सकती है। पिता दे सकता है 25%, बट 75% वैल्यूज उन बच्चों को आपको देनी है। मैं अपने स्कूल में टीचर्स को भी यही कहती हूं, बिकॉज आई से सिटिंग ऑन अ हायर पोजिशन, यू बी फर्म बट बी पोलाइट। ऊंची कुर्सी पे बैठने का मतलब चिल्लाना नहीं होता है। एंड यहां तो मुझे कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई सुनता भी तो मैं ये कह सकती हूं बड़े दावे के साथ कि मैंने आज तक अपने किसी टीचर पे चिल्ला के बात नहीं करी। आई ऑलवेज अंडरस्टैंड देम। यहां तक कि आप अगर स्कूल्स में जाएंगे, प्रिंसिपल का रूम कहां होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आई हैव टोल्ड माई टीचर्स, स्टाफ एंड माई चिल्ड्रन, आई हैव 1200 प्लस स्टाफ एंड चिल्ड्रन इन माई स्कूल, दे आर ऑल वेलकम टू माई ऑफिस एनी टाइम एनी वेयर। एक दिन एक बच्चा, 6th क्लास का बच्चा, ही रनिंगली कम्स टू माई ऑफिस, and I was having a meeting, when he saw all of them he got scared, so I said come in, so the like teachers and other people who were sitting there, ki like children come like this, I said I have given them the permission, they are very open with me, so he came with an envelope, a letter was there inside, and I kept that letter, and later on when the meeting was over I called that child, us bacche ko maine bulaya, to usne kaha ma'am maine wo letter padha, उसमें वही लिखा था कि द चाइल्ड वॉज नॉट वेल, एंड आफ्टर फ्यू डेज द चाइल्ड केम टू द स्कूल। सी आई डोंट ब्लेम द टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज दे आर ऑल्सो एग्जॉस्टेड। द टीचर सेड पढ़ना तो तुम्हें होता नहीं है, यहां भी आके हेड डाउन करके बैठ गए, बिकॉज दैट वॉज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दैट इलनेस, एंड द चाइल्ड वॉज हर्ट। हमारे टाइम के बच्चे थोड़ा ही थे, चार थप्पड़ मारो तो भी कोई बात नहीं, और प्रिंसिपल की तो सूरत भी हमें देखने से लगता था इससे बेटर है चुप है, दो थप्पड़ ही सह लेते हैं। लेकिन उसने जब मुझे कहा, उसमें लिखा था कि टीचर ने मुझसे ऐसे कहा, मुझे बहुत हर्ट हुआ, आई वॉज रियली नॉट फीलिंग वेल, इसलिए उसने वो मुझे लेटर लिखा, और आके मुझे कहता है कि मैम आई नो दैट यू वोंट बी हैविंग सो मच ऑफ द टाइम दैट आई टेल यू द स्टोरी, कि मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए बहुत सुंदर तरीके से उसने लेटर को लिखा था। एंड व्हेन आई गेव दिस लेटर टू माई सन एट होम, ही सेड अम्मा आई एम ब्लेस्ड, आपने मुझे तो जरूर मारा, मैंने मारा अपने बच्चे को मारा, बिकॉज देर वॉज नो वन टू एक्सप्लेन मी कि हाउ टू डील द चाइल्ड, बट एज आई ब्रॉट अप समर्थ आई गॉट टू नो कि कहीं जरूरी होता है पेशेंस रखना, और वो मैंने यहां जो मेरे 1200 बच्चे हैं, दे फील दैट वी आर ब्लेस्ड टू, ही सेड दैट दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ प्रिंसिपल। हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ देखने की, इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो आई कुड नेवर डेयर टू लुक एट दैट साइड वेयर द प्रिंसिपल वॉज सिटिंग। हो सकता है बुला ले और कुछ पूछ ले तो डर लगता था, लेकिन आई हैव मेड दिस चेंज इन माई स्कूल दैट टीचर्स एंड चिल्ड्रन आर वेरी कंफर्टेबल। आई टेल देम एक बार, मैं आपके साथ प्यार का व्यवहार क्यों करती हूं? ताकि आप मेरे बच्चों को प्यार दे सके। जब आप उनको समझेंगे, जब आप उनकी भावनाओं को समझेंगे, बात को समझेंगे, वो बहुत आराम से आपके साथ काम कर सकेंगे। लेकिन अगेन द थिंग कम्स फॉर द पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन, दे आर टेकिंग देम इन वन प्लेस सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, पूछें तो सही क्या बनना है उसको, दे डोंट गिव देम द स्कोप. रिसेंटली द रिजल्ट केम आउट ऑफ 10th क्लास, द चाइल्ड गॉट 65% मार्क्स एंड द फादर वॉन्ट्स हिम टू टेक साइंस. आई आस्क द चाइल्ड सेपरेटली, आपको क्या करना है? मैम आई कांट डू साइंस, मुझे समझ ही में नहीं आता. एंड द फादर सेज कुछ भी कर लेगा, बीएससी कर लेगा, पर करेगा साइंस से ही. अब आप क्या करेंगे? मेरे भी हाथ बंधे हैं. पेरेंट्स जो चाहते हैं हमको वो करना होगा. उसमें हमने क्या किया, बिकॉज फॉर साइंस यू शुड हैव 75%. आई टू सेटिस्फाई दैट पेरेंट आई टोल्ड देम कि ओके आफ्टर वी विल टेक फर्स्ट ड्यूटी, इफ यू स्कोर 75% वी विल गिव हिम साइंस, इफ ही डजंट देन ही हैज टू गो टू द चॉइस विच ही वॉन्ट्स. So this way we settled the things, and the child came and he said, thank you ma'am, because he knows that he cannot get 75% marks in science. Kya karega future mein? Sirf science leke jo kar sakta tha wo bhi nahi kar payega. To mera kehna hai, apni ambitions bachcho pe na rakhein, values dein, ek acha prani banne ki usko taakat dein, usme empathy karein, use uska self esteem, at least wo apne ko to samjhe hai kya. हम नहीं देते उसे वो मौका समझने का. लेकिन स्कूल में हूँ, बहुत सारे बच्चों में चेंजेस देखती हूँ, बहुत सारी बातों पे टीचर्स जो नहीं भी होती उस पर भी बच्चों को डांट देते हैं. तो हमें लगता है कि हमें अपना फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर रखना चाहिए, वी शुड कीप इट एट होम, बिकॉज ये जो बच्चे हैं ये आपके साथ वो नेगेटिविटी लेके बाहर जाएंगे एंड दे विल फील कि जिस दिन मुझे ये ओहदा मिलेगा आई विल बिहेव द सेम वे एज माई elders behaved with me. Today only I saw in the morning there was one child and one mother was sitting. Being a principal, these things come into my notice. And a father came and he asked the child to shift on the another chair. The child refused. But papa to taakatwar hai. Dusri baar papa ne kaha to khada hua wo baitha. Mere aage wali chair ki baat hai. Kyun? Hum kyun nahi baith sakte? Why we want them to compromise every time? And then I tell you parents, they are going to do the same thing with you when you will be in a weaker situation. अब कहते हैं कि वृद्धाश्रम खुल गए हैं. क्यों खुल गए? हमारे टाइम में क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें पाला था. अब आप जब जाते हैं तो वो जो क्रच है वो क्या है? वो छोटे बच्चों के लिए आश्रम है. आई सी द चिल्ड्रन क्राइंग लाइक एनीथिंग. किस तरह से रोते हैं वो जब आप छोड़ के जाते हैं पैसे कमाने के लिए. वो वैल्यू, वो इमोशंस, वो आप समझते नहीं कि आज सुबह के समय मेरे बच्चे को मेरा साथ चाहिए, मेरे हाथ से खाना चाहिए. वो 20 बच्चों के बीच में बैठा हुआ है, पूरा दिन माँ का इंतजार करता है. आपको सब कुछ मिलेगा, ईश्वर आपको देगा. मैंने 19 साल तपस्या करी, बाबा ने मुझे प्रिंसिपल बनाया, तो मुझे लगता है जैसे मुझे दिया आपको भी देगा. एक बार करके देखिए, भरोसा रखिए उस ईश्वर में, वो जरूर देगा. और मैं जहां हूं उन्हीं की वजह से हूं, एंड आई एवरी डे से आई एम ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.
बहुत सुंदर, आपने जैसे अपने दिल को बाहर यहाँ प्रस्तुत किया, जो सच में आप अपने जीवन में रोज देख रहे हैं उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेटर्स, पर वो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपनी कुर्सी पर जब आते हैं तो आते कहाँ से हैं? घरों से निकल कर ही तो आते हैं. जो माहौल घरों के अंदर है वही आकर ऑफिस के अंदर डेमोन्स्ट्रेट होता है. बहुत जरूरी है हमारा पहले ये देखना, बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि अवस्था से ही व्यवस्था बनती है. तो हम पहले तो इस पे हमारा काम करना बहुत आवश्यक है कि पहले हम स्व की अवस्था और व्यवस्था को ठीक करें, फिर हम घर की अवस्था और व्यवस्था को देखें, उसके बाद ही हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की या कार्यों की या बाहर फिर हम देश के और विश्व की बात करें तो उसकी अवस्था और व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे. तो मैं बहुत संक्षेप में इसी प्रश्न के ऊपर, हमारे बीच में हमारी बिंदु दीदी जी भी मौजूद हैं जो बहुत अनुभवी हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगी. 2 मिनट में दीदी आप हमको ये बताएं कि राजयोग हमको कैसे, क्योंकि आज विशेष दीदी हमें राजयोग का अनुभव भी कराएंगे, राजयोग हमारी अवस्था और व्यवस्था को ठीक करने में कैसे उपयोगी है. दीदी संक्षेप में आपसे हम आपके अनुभव से पूछना चाहेंगे.
ओम शांति. सम्मानीय मंच तथा सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों तथा बहनों, दो दिन से हम सब बहुत वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं। आज का भी विषय वैल्यूज एथिक्स एंड पब्लिक ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी डिटेल भी हम सब ने सुनी है। एथिक्स एक कुछ, इसको हिंदी में कहते हैं नीति शास्त्र। जैसे समझो एक डॉक्टर है, वो पेशेंट्स का इलाज करता है, लेकिन उसके सामने एक ऐसा पेशेंट आ जाए जो उसका दुश्मन है, उसने उसको किसी समय नुकसान भी पहुंचाया हो, लेकिन फिर भी एथिक्स क्या कहते हैं, उस समय उसको कोई भेदभाव नहीं करना है। समाज और प्रोफेशन का ये नियम है। जैसे बहन जी सुना रहे थे ना कि उसने कहा कि हिंदू नाम नहीं रखना यूनिवर्सिटी कॉलेज का, तब हम आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो उसने जूता दे दिया और जूते की नीलामी में इतने सारे पैसे मिल गए कि वो हेल्प हो गई फिर से हिंदू कॉलेज बनाने में। इसका एंड कहानी का इस तरह होता है कि काफी बड़ी मात्रा में वो इतनी हेल्प मिल गई जितनी की वो सोच के गए थे, क्योंकि वो तो देने वाले को देखना है ना, हमको कितने में देनी है, तो जितना उनको चाहिए था उन्होंने उतने में दिया, उनको उससे भी ज्यादा में दिया। तो आप अपने जब एथिक्स को रखते हैं, वैल्यूज को रखते हैं और गॉड में ट्रस्ट रखते हैं, तो देन आपकी हर इच्छा पूर्ण भी होती है। एक बार आशा दीदी जी सुना रहे थे, कोई आईएएस आईपीएस बैठे थे उनके सामने, कहते आपके हाथ में वास्तव में किसी व्यक्ति की फाइल नहीं होती, आपके हाथ में उसकी लाइफ होती है। आप जैसा डिसीजन देंगे उससे उसकी लाइफ बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, वो जेल में भी जा सकता है, वो छूट भी सकता है, उसको नुकसान भी हो सकता है, उसको फायदा भी हो सकता है। सही डिसीजन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में या फाइनेंशियल ग्रीड में अगर कोई रॉन्ग डिसीजन दे दिया, तो आप पूरी जिंदगी उसका भुगतान करेंगे। वो एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई अप्रोच नहीं थी, लेकिन वो सही था, और पॉलिटिकल प्रेशर या फाइनेंशियल ग्रीड में कोई रॉन्ग डिसीजन हो गया, यहाँ आके राजयोग की बात आती है कि जो भगवान को मानते हैं वो कर्म फिलॉसफी को भी मानते हैं, कि मेरा कितना पाप बना, रॉन्ग डिसीजन दिया। और ये एक पक्की बात है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ना, कुछ कोई ऑफिसर रॉन्ग करता भी है ना, उसकी अंतरात्मा एक बार जरूर उसको झिझकोरती है कि ये राइट तो नहीं है, बट वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को ना सुन के उस आवाज को दबा देते हैं, मार देते हैं, और फिर उनका ग्रीड या प्रेशर ओवर पावर कर लेता है उनकी अंतरात्मा की आवाज को। तो मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है, जो भगवान में ट्रस्ट करता है ना, वो पब्लिक के ट्रस्ट को भी जीत सकता है। जैसे भरत त्रिवेदी जी कह रहे थे ना कि वैल्यूज और एथिक्स अगर है तो पब्लिक ट्रस्ट जीतना मुश्किल नहीं, ट्रस्ट ही है तो, बड़े भाई साहब कह रहे थे तो भी ट्रस्ट जीतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों का जवाब हो सकता है, क्योंकि जिस दौर में आप बैठे हैं इसमें वैल्यूज एथिक्स को मेंटेन करना थोड़ा चैलेंज वाला काम जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहते हैं झूठ के रास्ते इतने सरल लगने लगे, सत्य पथ पर पाम रखा तो पसीना आ गया। तो अगर आप सत्य पथ पर पाम रखेंगे तो अवश्य ही पसीना आएगा, अर्थात मेहनत होगी, और एथिक्स को वैल्यूज को मेंटेन करके आप चलेंगे तो ट्रस्ट जीतना पब्लिक का कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटर को हिंदी में कहते हैं प्रशासक। प्रशासक को अगर फिर संधि विच्छेद करो तो दूसरों पर शासन करना, राजयोग कहता है खुद पर शासन फिर प्रशासन। जब तक आपका सेल्फ सॉवरेनिटी नहीं है तब तक आप दूसरों पर राज्य नहीं कर सकते। कुछ ना हमारी बहन एक भजन गाती होती है, औरों को जीतेगा कैसे तू भला, तुझसे तेरा मन न जीता जा रहा। तो जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल नहीं और वो चला है दूसरों को कंट्रोल करने, जैसे अभी सीमा जी भी कह रहे थे कि जरूरी नहीं है पैसे कमाना ही केवल एक वो ही बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन आप घर में रह करके कोई आपके घर में आए और आपके घर का वाइब्रेशन देखे, एटमोस्फियर देखे, बच्चों के संस्कार देखे, उससे वो कितना कमा के जाएगा। आप तो औरों के लिए भी, औरों को भी सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं। वो जो कमाई करेगा ना उससे उसके अंदर वैल्यूज, एथिक्स और ये सब चीजें आप उनको पढ़ा सकते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन से। तो इस प्रकार का विषय अभी भी चलने वाले हैं, ये विषय तो बहुत बड़ा है। तो राजयोग हमें उसमें बहुत मदद करता है। जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं ना तो उसमें हमें पता चलता है कि हमें किसी भी प्रेशर में नहीं आना है, ना फाइनेंशियल प्रेशर, ना पॉलिटिकल, ना कोई अन्य कोई मजबूरियां भी प्रेशर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसमें कार्मिक अकाउंट को मुझे लगता है कि अगर साथ में जोड़ लिया जाए ना, कार्मिक अकाउंट को जोड़ लेने से और समझ लेने से हमारी वैल्यूज नहीं जा सकती, हमारे एथिक्स नहीं टूट सकते हैं। तो इस बात पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। अभी हम इस मेडिटेशन के अंदर अवश्य ही अपने आप के साथ संकल्प करेंगे, क्योंकि आप सब यहाँ आए हैं वास्तव में भगवान से और करीबी रिश्ता जोड़ने के लिए। दुनिया में कोई इंसान जब एक दो को गिफ्ट देते हैं ना तो एक दो से प्यार होता है, तो प्यार में वो गिफ्ट देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, केयर करते हैं और उनकी कमियों को भी छुपाते हैं और उनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, तो समझते हैं बहुत प्यार है। अगर दो लोगों के बीच में आपके अति प्यारे ने कह दिया यहाँ आप गलत हो, देखना तेरे से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, मतलब प्यार का मींस वो मेरी कोई कमी नहीं बोलेगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बस महिमा महिमा करेगा और गिफ्ट देगा और मेरा ध्यान रखेगा। भगवान का भी हम सबसे बहुत प्यार है, लेकिन वो कुछ ऐड करता है, वो कमियां छिपाता नहीं, वो कमियां बताता है, रियलाइज कराता है, अप्रिशिएट भी करता है। जीवन ही अपने आप में बहुत बड़ी गिफ्ट है, अप्रिशिएट भी करता है, गिफ्ट भी देता है, महिमा भी करता है, लेकिन साथ साथ समझाता भी है। इसलिए कहा जाता है भगवान जिसको प्यार करता है उसको पहले रगड़ के साफ करता है। तो ऐसा भगवान का प्यार है हम सब बच्चों के लिए। देखो सूर्य की किरणें पेड़ पौधों पर पड़ती है ना तो पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी जब हमें ऊंचा उठाता है, प्यार करता है, तुम्हारी ईगो और डॉट्स की ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें ऊपर की ओर खींचता है। वो चीजें किनारे रखनी पड़ती हैं, हमारे डॉट्स को, हमारी नो कंप्लेंट नो डिमांड। भगवान से जब अभी मेडिटेशन करेंगे ना, नो कंप्लेंट नो डिमांड, बस उससे प्यार है। और उससे प्यार बढ़ाने के लिए और उसके प्यार का अनुभव करने के लिए आए हैं। और आज के विषय के अकॉर्डिंग अभी हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। हम आपको कुछ थॉट्स देंगे और आप उस संसार फील करेंगे। आप सबने आत्मा का भी लेसन ले लिया है, परमात्मा का भी लेसन ले लिया है, और जो समझ लिया है कि मैं आत्मा भरकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ और मेरा परमात्मा पिता निराकार भगवान शिव जो हम आत्माओं का सच्चा पिता है, बस ऐसे फील करो कि मेरे से 2 फुट की दूरी पर मेरे ऊपर है वो। और आज आपको हाथ भी रखवाया कि फील करो कि उस परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, बस इतनी ही दूरी है, वो एकदम मेरे करीब है। और इस ज्ञान सरोवर में आके तो बिल्कुल ही हम उसकी छतर छाया में और उसके साथ हम बैठ गए हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी भरकुटी के मध्य एकाग्र करें। आत्मा ज्योति जो शांति से भरपूर हो गई है, प्रेम से भरपूर हो गई है, शिव बाबा को इस हॉल में अपने सन्मुख सामने आप देखती रहे हैं। फील करें चैतन्य में शिव परमात्मा मेरे सन्मुख है। उनसे वायदा करें, मेरे मीठे शिव बाबा, प्यारे शिव बाबा, मैं आपकी छतर छाया के नीचे हूँ। आपका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। अभी पिछले 2 दिन से आपने जो अपने बच्चों के द्वारा मुझे वैल्यूज एथिक्स सिखाई हैं, समझाई हैं, मैं उसको अपने पर्सनल जीवन में, फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल जीवन में अप्लाई करूंगा, करूंगी। और फील करें इन बातों को जीवन में उतारने के लिए परमात्मा की वो शक्तियों की बरसात, वो प्यार की बरसात मुझ आत्मा के ऊपर हो रही है। यहां से जाने के बाद मेरा उद्देश्य है मुझे किसी भी कीमत पर अपनी वैल्यूज और एथिक्स को छोड़ना नहीं है। उसके लिए टेम्परेरी कोई नुकसान भी लगे लेकिन परमानेंट बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ है और हर हाल में मुझे पब्लिक के ट्रस्ट को जीतना है, उनके दिलों पर राज करना है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ सहन करना पड़े, चाहे कुछ त्याग करना पड़े, लेकिन मुझे अपने एथिक्स को, वैल्यूज को नहीं छोड़ना है। फील करो मेरी इस कमिटमेंट को शिव बाबा सुन रहे हैं और शिव बाबा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी आज्ञा पर चलो, बाकी तुम्हारी जिम्मेवारी मेरे सिर पर है। ऐसी आवाज भगवान की सुनो, फील करो, मेरे कानों में शिव परमात्मा की आवाज आ रही है। बच्चे तुम चिंता मत करो, आगे बढ़ो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ। ओ शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दीदी जी का, जो उन्होंने ना सिर्फ हमें राजयोग का उपयोग बताया स्वशासन के लिए, बल्कि उसका अनुभव भी कराया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि किसी बगीचे में हम जाते हैं तो नजर हमेशा गुलाब पर पड़ती है, क्योंकि गुलाब ने कांटों के बीच में रहकर खिलना सीख लिया है। तो वैल्यूज और एथिक्स को इस जीवन में अपनाना हमें भले ही कठिन लगता हो, लेकिन वही हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। और यदि हम सब राजयोग के अभ्यास के साथ अपने जीवन को कर्म योग की स्थिति में ढाल देते हैं तो वो मुश्किल भी मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि उसमें साथ और मदद परमात्मा की मिलती है। हम निमित्त मात्र करते हैं, वो कांटे भी फूल बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे से इस विषय को स्पष्ट किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं यहाँ बैठे आप सभी का करना चाहूंगी, क्योंकि अब आप इन अनुभवों को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उतने घर और उतने ऑफिस मूल्यनिष्ठ बनकर जाने वाले हैं। ऐसा वादा हम सभी कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं? बहुत सुंदर। तो अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं और हमारे इस मंच के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हमारा प्रयास इसी रीति से सार्थक होगा यदि हम अपने सबके जीवन को परिवर्तन कर सके, मूल्यनिष्ठ बना सके। तो कम से कम इतने परिवार तो मूल्यनिष्ठ बने, और उसको देखकर फिर समाज और देश भी उस राह पर चलने के लिए अग्रसर होगा। तो अभी हम सभी इन्हीं अच्छी अच्छी बातों को जीवन में धारण करने का लक्ष्य लेते हुए अभी यहाँ पर ब्रेक करेंगे, सभी भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे, और शाम को आपका सेशन पुनः 4 बजे इसी हॉल में होगा। तो हम सभी पंचुअलिटी के साथ 4 बजे पुनः इस हॉल में उपस्थित होंगे। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।